देवियों सज्जनों, गीता के 13वें अध्याय में हम जिस श्लोक की चर्चा कर रहे थे, मेरे साथ मिलके बोलिए, अमानित्वमदम्भित्व महिंसाक्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् पासनम् शौच स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः। इस तरह के आगे और तीन चार श्लोक हैं, कंबाइंड हैं, जो कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका लक्षण है, उसका सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक है कि कैसे होता है ज्ञानी व्यक्ति। जैसे पहले हमने दो तीन चीजों के बारे में पढ़ा कि जो ज्ञानी है वो अमानी होता है, उसको उसका अभिमान नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, वो फ्री ऑफ प्राइड होता है। इसी तरह उसमें हिपोक्रेसी नहीं होता है, दंभ नहीं होता है, अहिंसा होती है उसके अंदर में, इंटेंशन उसके अंदर की भावना में किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा नहीं होती है। इसी तरह अगली है शांति, दूसरों को क्षमा करता है। क्षमा क्या मतलब होता है? क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, फॉरगिव करते हैं, इसका अर्थ नहीं कि उसने जो गलत काम किया उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम कंडोन करते हैं कि नहीं भाई तूने जो किया ठीक किया, ऐसा नहीं है। इसका सिंपल यही मतलब है कि उसने जो किया वो मेरे से भी हो सकता है, वो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य, कोई भी मनुष्य संसार में 100% 100% प्योर नहीं होता है। आप एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं कर सकते, कितना भी महान व्यक्ति हो, महात्मा हो, जिसको क्रिटिसाइज करने वाले करोड़ों में ना हो, ऐसा एक भी बुरा से बुरा आदमी नहीं दिखा सकते। इवन दोज टेररिस्ट्स जिनको अच्छा मानने वाले करोड़ों से करोड़ों लोग ना हो, दुनिया हर तरह की चीजों में समाया हुआ है, कोई भी आदमी 100% प्योर नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमियां उसमें होता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो इसीलिए नहीं कि हम एक्सेप्ट करते हैं जो किया उसने ठीक किया, उसने गलत किया, पर इसीलिए माफ करते हैं कि यह गलती मेरे से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। जब मेरे से गलती होती है मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दूसरा मुझे माफ कर दे। अगर मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं तो मैं उन्हीं से उनको उसी तरह का ट्रीट करूं। इसका सिंपल सा अर्थ है कि मैं जैसा खुद के लिए चाहता हूं दूसरे के लिए वही व्यवहार करूं। क्षमा का अर्थ दया नहीं होता है, दया भी नहीं है, कंपैशन भी नहीं है, क्योंकि जब आप दया करते हैं ना तो अहंकार पैदा होता है, ईगो पैदा होता है। इसका मतलब आप समझते हैं कि वो छोटा है, मैं बहुत बड़ा हो गया, माफ करके मैंने बहुत बड़ा आदमी बन गया। ये जो खुद को बड़ा समझने की बीमारी है वो सबसे खतरनाक बीमारी होती है। अगर संसार में सबसे कोई होली डिजीज है, जो पवित्र बीमारी है, वो है कि अच्छा काम करके जो अहंकार पैदा करना, अरे ज्यादा खतरनाक होता है। क्षमा का सिंपल सा अर्थ है मैं खुद भी वीक हूं, मेरे से भी गलतियां होती हैं, अगर मैं दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को माफ करता हूं जो अनजाने में या नासमझ के कारण हुआ है, तो मैं खुद को माफ करने लायक बनाता हूं। जब मैं माफ करता हूं तो मैं अपने आप में अपने लिए बड़ा हो जाता हूं, मैं अपने नजर में बड़ा हो जाता हूं, मैं अपनी आत्मा को, अपने अंदर को और ज्यादा हायर लेवल पर लाता हूं, क्योंकि माफ करना आसान नहीं होता है। कोई भी चीज जो आप सुन रहे हैं, इनमें कोई चीज ऐसा नहीं कि जो बड़ा आसान है, पर जब आप कर जाते हैं तो आप एक नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं। आम ह्यूमन बींग से, साधारण इंसानों से आप थोड़े ऊपर आ जाते हैं। तो जितना आपके अंदर आपका हृदय फैलेगा, आपका दिल बड़ा होगा, उतना आपको क्षमा करने की शक्ति भी आपके अंदर बढ़ेगी और उतनी आपकी आत्मा शक्ति फैलेगी, उतना बड़ा बनेगी। आसान नहीं है, पर जो करते हैं या उल्टा कहें वही कर सकते हैं जो अपने दिल को बड़ा कर पाते हैं, वही माफ करने की क्षमता रख पाते हैं। जब मैं खुद की वीकनेस को, कमजोरी को रियलाइज करता हूं, तो मैं फिर दूसरे के वीकनेस को भी बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर सकता हूं। मुझे पता है वो गलत है, पर उसके लिए उसको सजा ना दे करके मैं अपने ऊपर एहसान करता हूं। पर जो इंटरेस्टिंग बात है, जो सबसे ख्याल रखने वाली बात है, किसी पर क्षमा करके उसको ओबलाइज्ड मत करिए, इस भाव से मत करिए कि मैंने किसी को ओबलाइज्ड किया है, क्योंकि ये जो ईगो है, मतलब इसीलिए मैंने क्षमा की क्योंकि मैं किसी खास रिलीजन में मानता हूं और मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि क्षमा करने वाला धार्मिक होता है, सत्य बोलने वाला पक्का हिंदू होता है, क्षमा करने वाला पक्का क्रिश्चियन होता है। तो आप एक डेंजरस एनिमल बनते हैं, आप एक अजीब किस्म की ईगो पैदा करते हैं, और वो जो होली ईगो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक होता है। वो आपके अंदर हिपोक्रेसी पैदा करती है, एरिस्टोक्रेसी पैदा करता है, और जो ये मानता है कि सारी दुनिया छोटी है, मैं बड़ा हूं, मैं जो सोचता हूं, मैं जो बोलता हूं वही होना चाहिए, बाकी सब मेरे सुनना चाहिए, अगर नहीं सुनते नहीं करते तो वो सब पापी है, सब नरक जाते हैं। जो मैं मानता हूं अगर दूसरा ऐसा नहीं मानते सब नरक जाते हैं, मैं जिस भगवान को मानता हूं अगर दूसरे नहीं मानते सब नरक जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे जो धर्माचार्यों का अकड़ है, जो गर्व है, अहंकार है, वो सबसे ज्यादा होता है। किसी भी धर्म का आचार्य हो, उसका जो अहंकार है वो आम आदमी के अहंकार से ज्यादा होता है। वो इसीलिए होता है कि वो अपने आप को होली समझता है, और अहंकार अपने आप में बुरी चीज है, और अहंकार अगर अच्छे काम के नाम पर पैदा हो वो तो बहुत ही घटिया चीज है। मतलब आप किसी का भला करो और उसके लिए अहंकार भी पालो तो ये बहुत घटिया चीज। अहंकार तो अपने आप में ही बड़ी बुरी चीज है। इसीलिए किसी को आप हेल्प करके अगर उसको ओबलाइज करने की सोचते हो तो आप अपने आप को बर्बाद करते हो। किसी को माफ करके अगर सोचते हो कि मैंने अपनी रिलीजियस ड्यूटी निभाई तो आप अपने रिलीजियस के साथ हिपोक्रेसी करते हो। वो नेचर में होना चाहिए, वो आपके दिल में होना चाहिए। आप कौन से रिलीजन को मानते हो वो मैटर नहीं करता, कौन सा शास्त्र पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, वो आपके दिल से निकलना चाहिए। आपके सामने एक जानवर कटता है, एक इंसान पीटता है, आपके अंदर दर्द होता है, अगर नहीं होता है तो आपके दिल में कहीं गड़बड़ी है। वो शास्त्र में क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिए, शास्त्र में लिखा है इसीलिए दर्द होना चाहिए तो आप ड्रामा करते हैं। आप बुद्धिहीन है, आपका दिमाग काम नहीं करता, आप दूसरों के सुन के करते हैं, दूसरों के पढ़ के करते हैं। अगर वहां लिखा होगा कि 10 लोग जो नहीं मानते उनको कत्ल करो तो आप कत्ल करने निकल पड़ते हैं, और यही होता है जब आपके दिल में नहीं होता है। इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर नेचर, आप सिर्फ आपके किसी खास धर्म ग्रंथ में लिखे होने से आप करते हो, और धर्म ग्रंथ में लिखा है, अगर मान लीजिए जो मेरे धर्म को नहीं मारता उसको मानता उसको मार डालो तो आप मारने को तैयार हो जाते हो। पति परमेश्वर होता है, पति के मरने के बाद पत्नी को भी उसके साथ मरनी पड़ेगी तो पत्नी को मार डालते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप इंसान नहीं बचते हो, आप सिर्फ दूसरों की नकल करते हो, ये खतरनाक होता है। इसीलिए ऐसा कोई भाव मत रखिए कि इसको करने से पुण्य होता है, धर्म होता है, शास्त्र में लिखा है इसीलिए मुझे ये सब करना है। ये होना चाहिए क्योंकि आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, आपके अंदर का आवाज कहता है, आपके दिल में तड़प होता है। तो अगर वो आपके दिल से निकले वो मंगल है, वो शुभ है, वो आपका भी भला करेगा, वो दुनिया का भला करेगा। अगर आप दूसरों के कहने के कारण मजबूरी में करते, शास्त्र में कहा, धर्म में कहा, पंडित ने कहा, उसने कहा, इसीलिए करते हैं, ना आप अपने लिए न्याय करते हैं ना दूसरों के लिए न्याय करते हैं। और एक क्षमा की जो डायमेंशन है वो है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूसरों की गलतियों को माफ करने की आदत डालें। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जो जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे कल्चर ने, हमारे सोसाइटी ने, ये कल्चर का मतलब कोई इंडियन कल्चर नहीं ना अमेरिका, हर कल्चर में एक गिल्टी फीलिंग पैदा करवाया जाता है। हर सोसाइटी में पेरेंट्स एक गिल्टी फीलिंग अपने बच्चों के अंदर जबरदस्ती पैदा करवाते हैं। वो जो आर्टिफिशियल गिल्टी फीलिंग है जिसके कारण सोसाइटी को फायदा होता है, मंदिरों को फायदा होता है, प्रीस्ट को फायदा होता है, पॉलिटिक्स को फायदा होता है, उसी के कारण ये गिल्टी फीलिंग पैदा करवाया जाता है। और ज्यादातर आदमी उस गिल्टी फीलिंग के कारण दबे रहता है जिंदगी भर, उसके सबकॉन्शस में या अनकॉन्शस में वो गिल्टी फीलिंग जो बना रहता है उसके कारण या तो वो ज्यादा खतरनाक बनता है या बहुत दबा हुआ होता है, वो लाइफ को ढंग से जी नहीं पाता है। इसलिए खुद को माफ करना भी सीखना चाहिए। जो व्यक्ति खुद को नहीं माफ कर सकता वो दूसरों को माफ नेचुरली कर ही नहीं सकता, वो नेचर से नहीं कर सकता, उसके दिल से वो माफ कर ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि आप मानते हो छोटी से छोटी गलतियां हो वो माफ करने लायक नहीं होता है। आपसे गलती से कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपके घर में कुछ गड़बड़ियां हो गई, आपसे कुछ गलतियां हो गई, और आप उसको दिल में बैठा के बैठते हो, वो तो चलो मैं एक्सीडेंट और कुछ गड़बड़ियां जिसके कारण किसी को नुकसान हो, लोग तो इसमें ही बहम पाल के बैठते हैं, हवन किया और आग बुझ गया, ओ क्या हो गया मेरे से, तो बड़ा अन्याय पाप हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बहम पाल के भी गिल्टी फील। ये नहीं कि उन्होंने क्रिएट किया है, ऐसा उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया है, ऐसा उनकी सोसाइटी ने उनको सिखाया, ऐसा उनका पंडित ने उनको सिखाया है, ऐसा उनके फिल्मी वालों ने सिखाया है, ऐसा टीवी सीरियल वालों ने सिखाया है। तो आपकी दिया जलते ही अगर बुझ गया तो आपको लगा घर में कयामत आने वाला है, तो आप गिल्टी फीलिंग पैदा ले बैठ जाते हैं। मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं है तो भी आपके अंदर अपराध बोध आ गया, तीन दिन तक नींद नहीं, दिया जलाया बुझ क्यों गया, कोई गड़बड़ी तो नहीं होने वाली है? वो गड़बड़ी नहीं भी होती तो हो जाएगी, क्योंकि जिस माइंडसेट में आप चल रहे हो दो दिन से उसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होनी ही थी। गैस बिना बंद किए आप चले ही जाओगे, बिना ब्रेक दिए रेड लाइट पे आप घुस ही जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में गिल्टी फीलिंग चल रहा है, तो एक्सीडेंट तो करवाओगे ही करवाओगे, फिर बोलोगे ये दिया बुझने से हो गया। ये किसने क्रिएट किया? आपके पंडित ने, आपके पेरेंट्स ने, आपकी सोसाइटी ने, आपके टीवी वालों के सीरियल्स ने, आपके फिल्मों ने आपके अंदर इस तरह की चीजें पैदा करवाई, और जिसके कारण आप एक पर एक मिस्टेक्स करते जाते हैं। क्यों करते हैं? उस गिल्टी फीलिंग के कारण जो आपके मन में दबा हुआ होता है। इसीलिए खुद को माफ करना भी जरूरी है। जो व्यक्ति खुद को माफ नहीं कर सकता वो कभी दूसरों को माफ नहीं कर सकता, और वो माफ आपके दिल से निकलनी चाहिए, न कि किताब में लिखा है इसीलिए करनी है। इसीलिए नहीं करना कि ये किसी शास्त्र में लिखा है, इसीलिए करना है कि ये दिल से निकलता है। ये सिर्फ माफी की बात नहीं, कोई भी अच्छी चीज आप करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी को आप सच बोलते हैं, आप कुछ भी करते हैं, अगर इसीलिए करते हैं कि ये किताब में लिखा है तो आप ड्रामा करते हैं, आप डरपोक हैं, आप कायर हैं। आप तो कल शास्त्र में लिखा होगा कि 10 लोगों को मारो तो आप मार भी डालेंगे, और लोग मारते भी हैं। शास्त्रों के नाम पर लोग कत्ल करते हैं, करोड़ों को मारते हैं, अरबों को मारते हैं। शास्त्रों में लिखा है इसलिए लाखों जानवरों को काट डालते हैं बलि के नाम पर, और वो वही लोग हैं, और उनसे ज्यादा पापी भयानक हो ही नहीं सकते। इसलिए शास्त्र तभी काम आता है जब आप अपनी सुनते हो। जो व्यक्ति खुद की नहीं सुनता, शास्त्र भी उसके लिए बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि कुछ भी इंटरप्रेट करेगा। कल एक पॉलिटिकल है, पर कभी कभी बोलना पड़ता है। कल भारत में एक बहुत न्यूज आई, काफी हंगामा मचा हुआ है। एक पत्र में लिखा कि ये जो गोमांस खाते हैं उनको कत्ल करना चाहिए, ऐसा वेद कहता है, इनको मारो। अब ये कुरान कहता था पहले, बाइबल कहता था, वेद वेद भी कहने लग गया। क्यों? क्योंकि मुझे मारना है, मुझे किसी को मारना है, उसके लिए मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए प्रूव करने के लिए, तो फिर मैं किसी का भी उठाऊंगा। शास्त्र को हम यूज करते हैं अपनी गंदी चीजों को सपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि ये जिसने कहा उसकी जो अपोजिट पार्टी है वो कोई दूध के धुले हुए हैं। वो अपोजिट पार्टी वाले भी कहते हैं टीवी में, हमने कितने बार सुना, मतलब आपको सेम जेंडर सेक्स के को पसंद है तो कहते हैं ये वेद में लिखा हुआ है। मतलब जो गंदगियां आपको फैलानी है सब वेद में ढूंढ लेंगे आप। पर कोई ये नहीं कहेगा कि सच बोलो, ये वेद में लिखा है, ये तो पंडित जी सिर्फ बोलेंगे, जो पढ़ा है वही बोलेगा। पर आपका काम है कि जितनी गंदगियां है वो कहां कहां लिखा है वो शास्त्र में ढूंढ के दिखाएंगे। पंडित जी का काम है वो बोले सत्य बोलना, धर्म बोलना, ये सब लिखा है। मतलब क्या है? हमारी खुराफाती दिमाग को सपोर्ट करने के लिए हम शास्त्र का सहारा लेते हैं। तो शास्त्र कहने पर करेंगे तो आप तो गए, आप नकली बनेंगे, आप बदमाश बनेंगे, आप बिगड़े हुए बनेंगे। वो शास्त्र आपके जो आपके जो भगवान ने आपको जिस रूप में बनाया, एक इंसान के स्वभाव में हमारे बड़े सुंदर बात कहते हैं, मनुस्मृति में कहता है कि जब भी आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है आप शास्त्रों को पढ़ें, वेद को देखें, वेद शास्त्रों में ना मिले तो धर्मशास्त्रों को देखें, धर्मशास्त्रों में ना मिले तो जो आपके आसपास आपके हिस्ट्री में इतिहास में या जीवित जिंदा कोई ऐसे महापुरुष है जिनको आप मानते हो, उसने उस परिस्थिति में वैसी सिचुएशन में क्या व्यवहार किया है उसको पढ़ो, उसकी उसके हिसाब से अपने लाइफ को झालो। अगर आपको किसी महापुरुष के बारे में जानकारी भी नहीं है, कोई शास्त्र भी पता नहीं है, तो आखिर कहते हैं श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन। अगर आपको कहीं कोई आइडिया नहीं है पर आप डिलेमा में हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, इसका सपोर्ट करूं, ये इसके सपोर्ट करूं, ये करूं वो करूं, आपको अगर ऐसा द्वंद्व है कि डिलेमा है और आपको कोई सपोर्ट नहीं है, अपनी अंतर की आत्मा को सुनो, वो सच बोलता है। सबसे सच आपके अंदर की आत्मा बोलती है, शास्त्रों से भी ज्यादा सच, महाजनों से भी ज्यादा सच, बड़े लोगों से भी ज्यादा सच आपकी दिल की आवाज बोलती है। जब भी आप देखते हैं आपके सामने कोई जानवर कटता है, सबसे पहले आपके ही दिल में आवाज आता है कि ये गंदा है या अच्छा नहीं है, आपको चोट लगता है, पर आप उसको दबा देते हो क्योंकि उसकी स्वाद में जब आप उसको डाल देते हो, आपकी आपकी अंदर की आवाज हमेशा बोलती है, जो अच्छा है उसको आपको अच्छा फील कराता है, जो बुरा है वो आपको बुरा फील कराता है। कभी सुन के देखिए अपने अंदर की आवाज को, आपको आपकी 90% डिलेमा आपकी सल्यूशन हो जाएगा। अगला जो ज्ञानी का लक्षण है वह आर्जव, सिंप्लिसिटी, सरलता। सरलता क्या है, सिंप्लिसिटी क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। जो दिल में है वही मुंह में है, बिल्कुल सीधा सपाट। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा करता है, रोना आता है तो रोता है, हंसना आता है, अभी अभी रोया, आपने उसकी कोई चीज छीन ली, उसने मांगा दिया नहीं, वो खूब रोया, और अभी कोई कार्टून देख लिया, कोई बिल्ली देख लिया, अभी वो हंस पड़ा। आप कहोगे हिपोक्रेट है, नहीं, वो जो दिल में है वही निकल पड़ता है, इसी को कहते हैं सरलता। वो प्लेन माइंडेड होता है वो व्यक्ति, सीधा सा। अगर कोई अच्छी चीज उसको बुरी लगती है वो बोल देता है कि ये मुझे बुरी लगती है, पब्लिक क्या कहेगी वो मैटर नहीं करता, विदाउट एनी कैलकुलेशन। वो जो बोलता है कोई कैलकुलेट करके नहीं बोलता है कि सामने वाला कैसा है, क्या सिचुएशन है, मुझे क्या बोलना है, सरल है, दिल और मन दोनों एक जैसा है। पर आप कहेंगे आपको नहीं लगता है कि ये बड़ा बेवकूफी वाली बातें हैं, नेचुरली ये आसान नहीं है। किसी महापुरुष ने कहा सिंपल बनने से ज्यादा हार्ड काम दुनिया में कुछ नहीं होता है, सरल होने से सबसे मुश्किल काम अगर लाइफ में कुछ है वो है सरल बनना। मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, क्योंकि सोसाइटी में हम जीते हैं, मुझे रोने को मन करता है मैं रोऊं, आप कहेंगे ड्रामा करता है, या कहेंगे आदमी होकर रोते हो, तो औरतों का काम है। कोई आदमी दिल पर हाथ रख के कहे उसको रोना नहीं आता है, तो भगवान ने अगर आपके अंदर रोने की शक्ति दी है तो आदमी औरत में फर्क क्या हुआ। पर क्या करें, हमारी पेरेंट्स ने, हमारे मां बाप ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे कल्चर ने हमें ऐसा ही ब्रेन वॉश किया है जब से पैदा हुए, तो आदमी हो नहीं रो सकता, ये औरत है तुम्हें रोना है, तो हम रोने को रोकते हैं, हंसने को रो मन करता है रोकते हैं। अब रोकते हैं, सोसाइटी है, आप कैसे हंसेंगे, मैं बोल रहा हूं आपको पसंद नहीं आ रहा, आप जोर से हंसोगे कैसे हंसोगे, बाकी लोग क्या करेंगे, अब हंस नहीं सकते क्योंकि समाज है। तो सरल होना आसान तो नहीं है ना। आपका मन करता है कि मुझे चुप कराओ, क्यों इतना बोलते हो, इतने जोर से बोलते हो, कैसे बोलोगे, बाकी लोग आप पर चिल्लाएंगे नहीं, आचार्य जी को बोल दिया, कब चुप हो जाते हो। तो सरल बनना आसान नहीं होता है। सुबह आप मॉर्निंग वॉक में जाते हो पार्क में, आपको पता है यह आदमी बड़ा गंदा आदमी है, सामने आ गया, अब कैसे बोलोगे, आप बड़े गंदे आदमी हो, मुझे तो आपको नमस्ते करने को भी मन नहीं करता, बोलोगे कैसे, बोलेंगे तो हमें बोलना पड़ता है, कैसे हैं आप, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, मैं 2 महीने से आपको मिस कर रहा था, बोलना पड़ता है आपको, बोलते हैं क्यों, अगर नहीं, अगर आपने बोल दिया तुम बड़े गंदे आदमी हो, मैं तो तुम्हारा शकल नहीं देखना चाहता था, तो लाइफ दुभर हो जाएगा ना। वो आदमी आपके पीछे कुत्तों से लेकर पुलिस से क्या क्या, गुंडे से क्या क्या नहीं छोड़ेगा है? आप किसी आदमी को ये बोल दिए कि आप उसको पसंद नहीं करते हो, मुश्किल होता है। बच्चे को, ज्यादातर बच्चे अपने टीचरों की पढ़ाई से खुश नहीं है, कैसे बोले कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए सरल बनना, सीधा बनना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना आसान काम नहीं है। पर जो ज्ञानी व्यक्ति है, उस जो उसको समझ आ गया जीवन का, सत्य का, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, समाज क्या है, उसको वो केयर नहीं करता। अगर हम केयर करते हैं तो करें, पर ये माने कि हमारे अंदर ज्ञान अभी तक आया नहीं है, वो रियलाइजेशन हमने अभी किया नहीं है। फिर ढिंडोरा ना पिटे कि हम ज्ञानी भी है और ये सब भी करते रहेंगे। तो कृष्ण कहते नहीं, आप करते नहीं करते वो आप पर डिपेंड करता है, पर ज्ञानी वो है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्योंकि मैं नीचे उतरते ही फिर आप पूछोगे ये सब हम तो नहीं कर सकते, ये सब कोई पॉसिबल थोड़ी है। किसी ने कहा आप करो? कोई नहीं कहता है कि आप ये सब करो, पर जो करता है वो ज्ञानी होता है, वो बड़ा होता है, वो महान होता है। किसी ने नहीं कहा आपको करने के लिए, इवन डोंट ट्राई टू डू इट, इफ यू विल डू इट, इफ यू ट्राई टू डू इट विल बी हिपोक्रेट, क्योंकि आपके अंदर तो उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है ना। आपको तो लगता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, पर क्या है कि उन्होंने कहा है कि ये करना ज्ञानी का लक्षण है और आई वॉन्ट टू प्रूव दैट आई एम ए ज्ञानी, सो आई हैव टू डू इट। आप तो हिपोक्रेट बनेंगे। दिल से आनी चाहिए, और जिसके दिल में आ जाता है वो ज्ञानी है, वो समझदार है। तो जिंदगी की जरूरतें हमें झूठा बना देती है। जिंदा रहने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं वो सामने आते ही मुझे बोलना पड़ता है कि आप बहुत अच्छे आदमी है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं होता क्योंकि मुझे समाज में जिम्मा होता है। घर में देखिए, साल में नहीं महीने में तो बहुत सारे लोग दर्जनों बार पूछते पति पत्नी से, पत्नी पति से, क्या तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो? उत्तर क्या मिलता है? अरे प्यार की क्या पूछते हो, सातों जन्मों तक तो मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। क्यों? मन में कितना भी इच्छा हो कि बस यही लाइफ बीत जाए बड़ी बात है, कौन मुसीबत मोल ने बोल देगी, बोल देगा तो नहीं मैं प्यार अब नहीं करता हूं, अब तो मैं थक चुका हूं, बस थक चुकी हूं। तो बोलना पड़ता है, सातों जन्मों के लिए साथ हूं, जिंदगी की मजबूरी हो जाती है, घर की मजबूरी, समाज की मजबूरी। ऐसा नहीं कि पूछने वाला इसीलिए नहीं पूछता है कि उसको उसके ऊपर डाउट है, सामने वाले के ऊपर, उसको खुद के ऊपर भी डाउट है, पता नहीं मैं प्यार करता हूं कि नहीं करता हूं। क्योंकि मुझे मेरे ऊपर डाउट है, मैं सामने वाले से थोड़ा कंफर्मेशन ले लूं कि कहीं उसके दिल में वही सब तो नहीं चल रहा है। ये चलता रहता है। आप पूछेंगे प्यार करते हो कि नहीं, वो बड़े गर्मजोशी से बोलेगा तुम्हारे बिना और किससे प्यार कर सकता, तुम ही तो हो। अब वो क्या हो, तुम चांद हो, तुम सूरज हो, सब कुछ तुम ही हो। तो भीतर और बाहर जब एक हो जाए तो फैमिली में भी गड़बड़ी आ जाती है, समाज में भी गड़बड़ी आ जाएगी। तो आप कहेंगे कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बनूं, सीधा आदमी बनूं, तो घर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, समाज में भी अराजकता नरकी आ जाएगी ना। पर ध्यान रखिए, एनार्की अराजकता उसी समाज में आती है सीधा होने पर जो समाज जितना ज्यादा कीचड़ से भरा हुआ हो। जैसे आप ऑनेस्ट रहना चाहते हैं भारत में, आप पॉलिटिकल लीडर हैं या ब्यूरोक्रेट में हैं, ऑनेस्ट हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। बिजली की कनेक्शन लेने दो, रिश्वत ना लो तो ना चले। पर उससे थोड़ा बेटर ऑनेस्ट आप अमेरिका में हो सकते हैं, यूरोप में हो सकते हैं। तो जिस समाज में जितनी ऑनेस्टी ज्यादा हो वहां स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उतने ज्यादा लेवल तक एक्सेप्टेबल होता है। जितना समाज गंदा हो वहां सीधे आदमी को कहा जाता है ये तो एनार्की फैलाने वाला, ये तो गंदगी फैलाने वाला। हम भारत में देखते हैं जो लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस वगैरह में आगे जाकर जो देश को चलाते हैं, गांव चलाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक बनते हैं, वो जो यंग लड़का या लड़की पहली बार ऑफिसर बनता है या बनती है, उनमें बहुत सारे लोगों को तो रहता है मुझे पैसा कमाना है, मुझे वो करना है, पर बहुत सारे लोग बहुत बहुत आइडियल सोच के साथ आते हैं कि मुझे कुछ करना है, जब मुझे पावर मिलेगा तो मैं कुछ अच्छा करूंगा। पर 8-10 साल नौकरी के बाद वो आइडियलिज्म तो छोड़िए, वो इतना लूटता है पब्लिक को, नेताओं के इतने इतने गुलाम बन जाते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते क्यों बना। और वही आदमी जब दूसरे देश में आ जाता है, वो बिगड़ा हुआ से बिगड़ा हुआ आदमी यहां ऑनेस्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को उसी में बनना पड़ता है। और एक अच्छा आदमी बहुत सारे बुरे आदमी के बीच में रह जाए, उसको माना जाता है कि ये अराजक फैलाएगा, ये उपद्रव करेगा, ये एनार्की फैलाए, ये हमारा सिस्टम को गड़बड़ करेगा। एक हमने कहानी सुनी थी, एक व्यक्ति ने राजा को कन्विंस कर दिया कि मेरे पास एक दिव्य वस्त्र है, डिवाइन ड्रेस, और ये मैंने साधना करके तपस्या करके देवताओं से ली है। तो राजा कन्विंस्ड हो गया, तो उसने कहा उस ड्रेस पहनने के लिए आपको अपने ड्रेस उतारनी पड़ेगी, वो टोपी उतारो। तो उसने टोपी उतार के रखा, तो बोले अब धीरे धीरे ये कपड़े उतारो। बोले जिस कपड़े को उतारते जाओ मैं उसके जगह उसका डिवाइन कपड़े देता जाऊंगा, टोपी उतारो तो मैं दिव्य टोपी दूंगा। तो राजा ने जब कपड़े उतारे, टोपी उतारा, कपड़े उतारे, तो उसने बोला कहां ये तो अब सर पर तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। उस व्यक्ति ने राजा के कान में कहा, ऐसा है कि देवताओं ने मुझे कहा था आते समय कि ये वस्त्र उसी को दिखेगा जो असली बाप का बेटा हो। अच्छा, हां मुझे दिख रहा है, बड़ा सुंदर टोपी है। उस आदमी ने बोला एक एक कपड़े उतारो, राजा ने उतारा। बोले दिव्य वस्त्र दिख रहा है जी? बिल्कुल दिख रहा है, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य, बहुत भव्य। क्योंकि उस आदमी ने राजा के कान में कहा ये कपड़े सिर्फ उन्हीं को दिखेंगे जिनके असली बाप हैं। अब राजा कैसे कहेगा कि मैं नाजायज औलाद हूं? राजा को दिख रहा है, सभा में लोग बैठे हुए हैं, अब राजा का आखिर कपड़ा बचा हुआ है, पब्लिक हॉट बम उठा रहे, क्या नंगा होंगे राजा। उस आदमी ने पब्लिक में खड़ा होकर राजसभा में बोला सुनो, देवता ने मुझे कहा था ये दिव्य वस्त्र से उन्हीं लोगों को दिखेगा जिनके पिता असली हो। पूरी राजसभा चिल्ला उठी, क्या सुंदर वस्त्र है, क्या भव्य वस्त्र है। राजा नंगे हो गए, लोगों को दिव्य वस्त्र दिख रहा है, राजा को भी दिव्य वस्त्र दिख रहा है। आदमी वहां चुप नहीं हुआ, बोला महाराज आप इस राज्य में पहले व्यक्ति हैं जो आपने दिव्य वस्त्र पहना है, डिवाइन ड्रेस पहना है, और इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए, हम इसकी शोभा यात्रा निकालेंगे, प्रोसेशन निकालेंगे, पब्लिक को पता चले कि राजा कितने महान हैं, जिनको देवताओं के द्वारा दिया गया वस्त्र मिला पहनने के लिए। तो शोभा यात्रा निकाली गई और पब्लिक में यह बता दी गई ये दिव्य वस्त्र उसी को दिखेगा पूरी जनता कह रही है वाह वाह राजा के क्या सुंदर वस्त्र हैं, क्या चमकता है, क्या तेज है, क्या ओज है। ये छोटा बच्चा बाप के कंधे पर खड़े होकर देख रहा था, बोले पापा ये राजा तो नंगा है। चुप, तू मेरी नाक कटवाएगा, तुझे दिखता नहीं, ये चुप हो जा बेटे, चुप। नहीं पापा ये राजा नंगा है। बाप की मुसीबत आ गई, उसका बेटा बोल रहा है बाप राजा नंगा है, उसको दिव्य वस्त्र नहीं दिख रहा है। बच्चा सच बोल रहा था क्योंकि वो बच्चा है, पर पूरे राज्य को प्रॉब्लम हुआ, उसके बाप को प्रॉब्लम है, राजा को प्रॉब्लम हुआ, मंत्री को प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ये सारा का सारा झूठ खोल देगा। पर बच्चा तो बच्चा है, उसको क्या फर्क पड़ता है झूठ सच से, वो दिख रहा है नंगा है तो नंगा है। उसको थोड़े बाप की तरह चिंता है कि उसकी बदनामी होगी, उसकी मां बदनाम होगी, उसकी पत्नी बदनाम होगी, उसको थोड़ी ही चिंता है। ऑनेस्टी वही प्रॉब्लम क्रिएट करती है जहां ऑलरेडी झूठापन बहुत ज्यादा हो। अगर पूरी की पूरी सोसाइटी में झूठापन बहुत ज्यादा हो तो ऑनेस्ट आदमी की ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे वो अराजकता फैला रहा हो। पर जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जिसने दुनिया को समझा है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों केयर करे किसको। जब उसको समझ आ जाए जीवन क्या है, उसके लिए कौन क्या कहता है परवाह नहीं होता है। इसीलिए वो सरल होता है, सीधा होता है। एक और छोटी सी कहानी कह के समाप्त। सिकंदर जब जीतता हुआ आया भारत में सिंधु घाटी, सिंधु नदी के पास, काफी दिन तक डरा डाला। उसकी जो मिनिस्टर्स हैं, जो आर्मी लोग हैं, कमांडर्स हैं, इधर उधर घूमते रहते थे जंगल में, तो उन्होंने आकर अलेक्जेंडर को बताया कि ये इस देश में हमने एक अजीब तरह के इंसान को देखा, ये लोग जंगल में पहाड़ की गुफाओं में मिलते हैं, बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, उनके मूंछ दाढ़ी बड़े बड़े लंबे होते हैं, शरीर ऐसे बिल्कुल पड़ा रहता है, कपड़े शरीर में क्या वो बैठे रहते हैं आंख बंद करके, पर इनको यहां बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, बड़े कंगाल होते हैं, गरीब होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होते हैं, गंदे होते हैं, नहाते भी नहीं, महीनों महीनों तक एक जगह बैठे रहते हैं, पर इनको लोग यहां बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं ऋषि मुनि है, और कहते हैं इनको बड़ा वो फिलोसोफर हैं, इनको फिलोसफी आती है, वो रियलिटी को समझते हैं। तो अलेक्जेंडर ने बोला ऐसी बात है तो मुझे ऐसे आदमी को देखना है, तो लाओ पकड़ के कहां है। तो गए ऋषि को हिलाया उठाया, बोले चलो आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट मिलना चाहते हैं। तो उसने पूछा ये कौन है, बोले जिन्हें दुनिया को जीता है। तो दुनिया को जीत लिया कोई ऐसा है तो आप इसको बोल दो मेरे पास आए, कमाल है। अरे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, तुम्हारे पास आएगा तो 2 करोड़ का आदमी, तेरे पास कपड़े गंदे कपड़े पड़े हैं, तेरे पास आए तो चल। मैं क्या, वो सर कटवा देंगे, सर क्या रखा है सर में। वो कितना डराए धमकाए ललचाए, वो हिले ही नहीं ऋषि। अलेक्जेंडर को बोला, अब उसको तो जिंदा आदमी चाहिए था, थोड़े मारेगा। तो बोले ठीक है, कोई अजीब आदमी है तो हम ही चलते हैं। अलेक्जेंडर ऋषि के सामने आया, ऋषि बैठा हुआ है, तो उसके सिकंदर के लोगों ने बोला अरे खड़े हो जाओ, अलेक्जेंडर द ग्रेट आए हुए हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या होता है, उसके अंदर भी वही आत्मा जो मेरे अंदर है, उसको भी मरना है, मुझे भी मरना है, कड़ा क्या होना। अलेक्जेंडर को समझ में नहीं आया ऐसा भी कोई आदमी होता है, भिखारी तरह के रहता है, फकीरों की तरह रहता है, गंदे कपड़े पहनता है, शरीर को वजन करो तो 20 किलो नहीं होगा, हड्डियां दिखती है, उसके बावजूद भी उसको कोई डर नहीं, तलवार का डर नहीं, मरने का डर नहीं, राजा का कोई डर नहीं, कुछ नहीं। क्यों? वो डर जा चुका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर से, आत्मा से, मन से, समाज से, संसार। ये नहीं कि वो कोई अकड़ है, ये नहीं कि वो कोई घमंड है। उसको कोई मिस इंटरप्रेट ना करे कि वो उसका अहंकार है। वो अहंकार नहीं है, वो उसकी रियलिटी है। वो रियलिटी को समझता है, उसके लिए क्या बड़ा क्या छोटा सब बराबर है। वो अगर खड़ा होगा तो चींटी के सामने भी खड़ा हो जाएगा, गाय के सामने भी खड़ा हो जाएगा, सिकंदर के सामने भी खड़ा हो जाएगा। तीनों को बराबर की नजर से देखकर खड़ा होगा। अगर नहीं होगा तो वो कुत्ते के सामने भी खड़ा नहीं होगा, तो सिकंदर के सामने भी नहीं खड़ा होगा। तो जो ज्ञानी है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार हम ज्ञानी के और कुछ लक्षण पढ़ेंगे। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।